गिरिराज किशोर रचित परिशिष्ट दलित प्रसंग। गिरिराज किशोर हिंदी के प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं। वह हाल के वर्षों में उनका महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित वृहत उपन्यास पहला गिरमिटिया काफी चर्चा में रहा है। इस उपन्यास पर उन्हें वर्ष 2000 में व्यास सम्मान जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिल चुका है। इससे कुछ वर्ष पहले वे ढाई घर उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। ढाई घर उपन्यास विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुदित होकर भी छपा है। गिरिराज किशोर के अन्य उपन्यास भी काफ़ी चर्चित हैं, जिनमें जुगलबंदी, दो यात्राएं, इंद्र सुने, लोग, यथा प्रस्ताविक व असलाह आदि उपन्यास शामिल हैं। गिरिराज किशोर ने उपन्यासों के अतिरिक्त कहानी व नाटक की रचना भी की है। वह अनेक विषयों पर उनके लेख भी छपते रहे हैं। जीवन का अधिकांश समय वे IIT कानपुर के उच्च प्रशासनिक अधिकारी रहे व कुछ वर्ष भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला से वे शोध के लिए संबद्ध रहे। गिरिराज किशोर व्यापक संदर्भों में सामाजिक सरोकारों के लेखक हैं। भले ही लेखन की विधा कोई भी हो, हिंदी में दलित साहित्य की गूंज तो इधर हाल में ही सुनाई देने लगी है, लेकिन गिरिराज किशोर ने बहुत पहले समाज में जाति विभाजन और दलित समस्या को लेकर गंभीर लेखन किया है। इस संदर्भ में उनके उपन्यास यथा प्रस्तावित व परिशिष्ट में विशेष रूप से संस्थाओं में दलित छात्रों के साथ जो अमानवीय व्यवहार होता है उसे केंद्रीय विषय माना गया है। इन दिनों दलित साहित्य जिस प्रकार चर्चा के केंद्र में है, उस संदर्भ में परिशिष्ट के दलित प्रसंग पर चर्चा बहुत जरूरी है। करीब 300 पृष्ठ के बड़े उपन्यास परिशिष्ट का प्रथम प्रकाशन 1984 में हुआ। हालांकि लेखक ने अपनी भूमिका में बताया है कि वे कई वर्षों से इस उपन्यास को लिखने की बात सोच रहे थे। इन दिनों दलित साहित्य के संदर्भ में स्वानुभूति व सहानुभूति के अंतर की जो चर्चा हो रही है, उससे बहुत पहले यह कहा है कि पिछले 4-5 वर्षों के दौरान अनुसूचित होने की मानसिकता के प्रति संवेदना का निर्माण हो जाने पर ही कलम उठाने का साहस हुआ। अपनी इसी धारणा को उन्होंने कुछ और स्पष्ट किया है, यह कहकर कि सच पूछिए तो जातियां अनुसूचित नहीं होती, मानसिकता होती है, मानना और समझना दोनों। वास्तव में अनुसूचित शब्द तो ब्रिटिश उपनिवेशवादी प्रशासन की सुविधा का शब्द है, जब उन्होंने पहले डिप्रेस्ड कास्ट शब्द का इस्तेमाल किया, फिर भारतीय संविधान में शेड्यूल कास्ट और ट्राइब दोनों को ही दर्ज हो गए, उन जातियों के रूप में जिन्हें नौकरियों या कुछ अन्य क्षेत्रों में आरक्षण की रियायत दी जाती थी। उन्होंने सिर्फ 10 वर्षों के लिए व बाद में यह मियाद हर 10 वर्ष के बाद अगले 10 वर्ष तक बढ़ाई जाने लगी। वैसे ही जैसे हिंदी को 26 जनवरी 1965 से पूरे देश की एकमात्र राजभाषा बनना था, लेकिन यह मियाद बेमियाद बना दी गई और अब कभी भी हिंदी मौजूदा संविधान या व्यवस्था के तहत भारत की एकमात्र राजभाषा बन पाएगी, इसमें संदेह है, लेकिन यह प्रसंग इतर है। इस बीच जनवरी 2001 के हंस मासिक में हिंदी उपन्यास को डॉक्टर तेज सिंह ने दलित दृष्टि से पुनर्व्याख्या किया है। पुनर्व्याख्या के उस क्रम में गिरिराज किशोर के यथा प्रस्तावित व परिशिष्ट लिखने के लिए लेखक सिर्फ मानसिक स्तर पर दलित हुआ है, ना कि सामाजिक स्तर पर, अर्थात लेखक को सामाजिक दलित के मानसिक कष्टों का कोई आभास नहीं है। अमृतलाल नागर, निराला, जगदीश चंद्र, चतुर्सेन शास्त्री, यहाँ तक कि प्रेमचंद व पांडे बेचन शर्मा उग्र जैसे दलित जीवन को चित्रित करने वाले लेखकों के संबंध में डॉक्टर तेज सिंह का सामूहिक निर्णय है कि ये सभी लेखक दलित समाज के प्रति अपनी रचनाशीलता में कितने ही सहानुभूतिपूर्ण क्यों न हों, चाहे इस लेखन में कितनी भी जेन्युइन संवेदना क्यों न रही हो, या लेखन दलितों की बढ़ती हुई सामाजिक चेतना को अवरुद्ध करके उन्हें यथास्थितिवादी बना देता है। इन सभी लेखकों के लेखन में कुछ अंतर भी जरूर रहे होंगे और हैं, लेकिन इन सबके प्रति डॉक्टर तेज सिंह का एक ही निर्णय है कि गैर दलित उपन्यासकार जातिवाद को मानसिक समस्या मानकर जातिवादी समाज व्यवस्था को ही मजबूत कर रहे हैं। इस प्रकार से वे जातिवाद का विकास करके समाज को जातियों में बांटने का ही काम कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी के एक मार्क्सवादी विद्वान ने दिल्ली में डॉक्टर तेज सिंह की एक पुस्तक के विवेचन पर उन्हें दलित साहित्य लोचक के साथ साथ मार्क्सवादी आलोचक भी कहा था। परिशिष्ट के कथ्य पर विचार करने से यह बात साफ हो जाएगी कि उपन्यास में आखिरकार क्या चित्रित हुआ है, जिससे यह या देखा जा सकता है कि यह उपन्यास यथास्थितिवाद का उपन्यास है या फिर किसी अन्य प्रकार का। लेकिन उससे एक और सवाल भी सामने आता है कि उपन्यास में जो यथार्थ चित्र प्रस्तुत होता है, क्या उसे लेखक अपनी मनमर्जी से दिशा दे सकता है या उसे यह दिशा देनी चाहिए। यथार्थवाद में कतिपय रोमांसवाद को मिलाने की वजाहत करते हुए मैक्सिमम गोर्की ने यथार्थवादी लेखकों को अपने चित्रण में इतनी छूट तो जरूर देने का आग्रह किया था कि शोषक शोषित संघर्ष में शोषित वर्ग की जीत के प्रति आशावाद का भाव जरूर जगाएं। संघर्ष में पराजय को चित्रित करते हुए भी संघर्ष की अंतिम विजय के प्रति जरूर आशा का संचार करें, जैसा उन्होंने माँ उपन्यास में किया भी। लेकिन जो लेखक गोर्की के रोमांटिक यथार्थवाद से प्रभावित नहीं है या समाज की परिस्थितियों का यथार्थ इस हद तक जटिल और निराशापूर्ण है कि वे उस यथार्थ को केवल आलोचनात्मक दृष्टि से प्रस्तुत और कुछ हद तक विश्लेषित कर सकते हैं, तो ऐसे लेखकों के यथार्थ चित्रण को किस कोटि में रखा जाए। डॉक्टर तेज सिंह के अनुसार यथास्थितिवादी लेखक के रूप में या जैसे कि बहुत से अन्य आलोचकों की राय है कि प्रेमचंद, जगदीश चंद्र या गिरिराज किशोर जैसे लेखक अपने यथार्थ चित्रण में निश्चय ही अपने आलोचनात्मक रुख के कारण परिवर्तनवादी ठहरते हैं, ना कि यथास्थितिवादी। परिशिष्ट का कथ्य है क्या? दलित जीवन से इसका क्या संबंध है? दलित जीवन व उससे जुड़े सामाजिक या अन्य प्रकार के प्रश्न व समस्याएं इसमें किस ढंग से प्रस्तुत हुई हैं? वास्तव में जब यह उपन्यास प्रकाशित हुआ उस समय तो किसी आलोचक ने इस उपन्यास को दलित दृष्टि से देखा या पहचाना भी नहीं। अलबत्ता हिंदी में दलित साहित्य की चर्चा आरंभ होने के बाद जो 1990 के बाद ही केंद्र में आई, उन उपन्यासों पर पुनर्विचार आरंभ हुआ जिसमें दलित जीवन विशेष रूप से प्रस्तुत हुआ और उसके साथ ही जीवन को चित्रित करने के अधिकार का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ। यह कहकर कि एक गैर दलित लेखक कैसे दलित की पीड़ा, उसके प्रश्नों या समस्याओं को समझ सकता है और अगर वह अपने सामाजिक अनुभव या पर्यवेक्षण के आधार पर दलित जीवन को रचना का विषय बनाता है तो वह गैर दलित लेखक होने से जरूर ही अप्रमाणिक होगा, क्योंकि वह सहानुभूति से आया है न कि स्वानुभूति से। अर्थात दलित जीवन पर रचना के लिए स्वानुभूति को जैसे एक अघोषित या कुछ हद तक घोषित शर्त भी बना दिया गया, परिणामतः साहित्य के वस्तुगत आकलन की संभावना पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। एक तरह से लिखने पर ही एक प्रकार का सेंसर आयद कर दिया गया कि किसी लेखक को किस विषय पर लिखने का अधिकार है और किस विषय पर लिखने का अधिकार नहीं है। लेकिन लेखन और सृजनात्मक लेखन तो इन शर्तों या दीवारों की कैद मानता नहीं, और यह अलग बात है कि लेखक की तरह पाठक आलोचक को भी यह स्वतंत्रता है कि वह उसे किस रूप में स्वीकार करता है या किस रूप में उसकी व्याख्या करता है। इन सब विवादों में अंतिम कसौटी अंततः समय की ही सिद्ध होगी, जो यह तय करेगी कि कौन सी रचना या कौन सा विचार कितना दीर्घकालीन बन जाता है। परिशिष्ट की शुरुआत लेखक इन शब्दों से करते हैं, अनुकूल की कहानी उतनी ही बेमजा है जितना अनुकूल स्वयं, न उसमें आनंद ही है और न भव्यता, एकदम ठंडी, उसी की कहानी नहीं है और भी उससे लगे बधे लोगों की भी। आपत्ति तो इन शब्दों पर भी यही हो सकती है कि एक गैर दलित लेखक ही दलित नायक की कहानी को ठंडी बेमजा संबोधन दे सकता है। खैर, उपन्यास एक दुखांत कथा है और दुखांत भी काफी मार्मिक। एक दलित कर्मचारी बावन राम अपने मेधावी बेटे राम अनुकूल को IIT जैसे देश के सर्वोच्च इंजीनियरिंग संस्थान में दाखिल करवाकर देश का उच्च कोटि का इंजीनियर बनाने का सपना देखता है। बावन राम का अपना समाज, उसके निकट और दूर के संबंधी, उसके क्षेत्र का पिछड़ी जाति का उसका परिचित सांसद, सभी उसके सपने को शुरू में ही तोड़ देने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन बाप बेटे दोनों में ही सपना पूरा करने की धुन है और इस धुन में बेटा IIT में दाखिल तो हो जाता है और दाखिल होने के साथ ही उसका संघर्ष कम और दुखांत अधिक शुरू हो जाता है, जिनका प्रतीक चरित्र राम अनुकूल नहीं बल्कि उसके पूर्ववर्ती छात्र राम उजागर बनता है, जो IIT में दाखिल भी आरक्षण के कोटे से नहीं खुली प्रतिस्पर्धा की परीक्षा में चयनित होकर हुआ है। राम उजागर जो दलित आत्मसम्मान का प्रतीक बहादुर चरित्र है, लेकिन आत्महत्या कर चुके एक अन्य छात्र की लाश पंखे से उतारने के क्रम में उसका मानसिक संतुलन ऐसा बिगड़ जाता है कि पूरे संस्थान में दलित छात्रों के पक्ष में जो सकारात्मक संतुलन उसकी आत्मविश्वस्त उपस्थिति से बना था, वही संतुलन गड़बड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में पूरी व्यवस्था का, विशेष तो अभिजात वर्ग की शिक्षण संस्था आईआईटी का भीतरी फांसीवादी चरित्र उघड़ आता है और अनुकूल इन परिस्थितियों में का सामना सशक्त ढंग से करता है। खुद इन परिस्थितियों को राम उजागर आत्महत्या कर व्यवस्था को अपना कातिल सिद्ध कर जाता है और बावन राम और अनुकूल के सपने संघर्ष के बीचों बीच लटके हुए दिखाकर उपन्यासकार व्याख्या के लिए खुद को स्वतंत्र छोड़ देते हैं। परिशिष्ट उपन्यास को पढ़ने के बाद पाठक के मन में कई तरह के प्रश्न उठ सकते हैं। वैसे तो किसी रचना में प्रश्न पैदा कर सकने की क्षमता ही रचना की शक्ति का प्रमाण है। पहला प्रश्न तो खुद लेखक ने उपन्यास को शुरू करते ही उठा दिया कि अनुकूल राम की कहानी बेमजा भी है, ठंडी भव्यता और आनंद उसमें कहीं है ही नहीं। लेकिन लेखक यही कहानी पाठक को पढ़ाना चाहता है और विषय के चयन को लेखकीय विवेक के अधीन मानता हुआ अपनी कथा का आरंभ करता है। लेखक ने तो यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों ही दिए हैं, लेकिन पाठ की संवेदना की दृष्टि से प्रश्न यहाँ यह है कि पाठक उपन्यास या कोई रचना पढ़ने के लिए क्यों और कैसे चुनता है। अध्यापकों द्वारा क्लासरूम में हजारों हजार बार दोहराए जाने वाला सवाल कि साहित्य का पठन पाठन क्यों? क्या केवल साहित्यिक सौंदर्य की अनुभूति प्राप्त करने के लिए या किसी बृहत्तर सामाजिक उद्देश्य के लिए या फिर दोनों की ही प्राप्ति के बोध के लिए? यदि केवल सौंदर्य अनुभूति के लिए परिशिष्ट को पढ़ा जाएगा तो ऐसे पाठक को निश्चय ही यह कहानी बेमजा और ठंडी ही जान पड़ेगी। लेकिन यदि इस पाठन की सौंदर्य भूति सामाजिक संवेदना से भी जुड़ी हुई है तो संभवतः ऐसे पाठक को परिशिष्ट मानसिक उत्तेजना व संतोष प्रदान करने वाली रचना प्रतीत होगी। एक सवाल फिर भी रहेगा कि सामाजिक संवेदना व सरोकारों से युक्त होकर भी क्या परिशिष्ट एक यथास्थितिवादी या जातिवादी व्यवस्था की सार्थक रचना का बोध देती है या उससे कुछ अलग। सच तो यही है कि गिरिराज किशोर ने भारतीय समाज में काफी बड़े पैमाने पर व्याप्त जातिवादी व्यवस्था को परिशिष्ट में एक उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान के संदर्भ में काफी निर्ममता और वस्तुगतता के साथ उघाड़ा है। यह भी सच है कि उपन्यास का दुखांत कथित निम्न जातियों या दलित वर्ग के सामने बावजूद सारे कानूनी अधिकारों के उच्च जातिवाद की व्यवस्था समर्थित पहाड़ का क्रूर चित्र प्रस्तुत करता है। इस अंतर विरोध को रेखांकित करते हुए कि जिस व्यवस्था ने दलित वर्ग को कानूनी रियायतों द्वारा ऊंचा उठाने के कुछ अधिकार संविधान व कायदे कानूनों में दर्ज किए हैं, व्यवहार में उसी व्यवस्था के कर्णधार इन कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हैं व सामाजिक व प्रशासनिक अमानवीय व्यवहार द्वारा इन एक हाथ से दी गई रियायतों को दूसरे हाथ से वस्तुतः छीन लेते हैं। दलित वर्ग को इन कानूनी रियायतों की किताबी व्यवस्था के बावजूद इन्हें व्यवहार में हासिल करने के लिए एक पहाड़ से टक्कर लेने जैसा संघर्ष ही करना पड़ता है। न सिर्फ कानूनी रियायतों को ही हासिल करना एक लंबा संघर्ष है, जैसे बावन राम और उसके बेटे अनुकूल राम की दिल्ली यात्रा, अपने इलाके के सांसद से मिलने आदि की स्थिति से पता चलता है। लेकिन यदि दलित वर्ग का छात्र अपनी प्रतिभा से बिना किसी रियायत से कोई पोजीशन हासिल करने में सफल होता है, जैसे राम उजागर ने प्रतिस्पर्धा परीक्षा पास कर आईआईटी में प्रवेश हासिल किया न कि आरक्षण द्वारा, तो ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों को ही वर्चस्ववादी उच्च जातीय अहंकार युक्त संपन्न वर्ग द्वारा इस तरह घेर कर प्रताड़ित किया जाता है कि राम उजागर जैसा जुझारू व संघर्षशील व्यक्तित्व भी पराजित होने पर आत्महत्या करने के लिए विवश होता है। दलित साहित्य की अवधारणाओं व सीमाओं संबंधी अभी अनेक मत प्रचलित हैं, लेकिन दलित जीवन से संबंधित साहित्य को दलित साहित्य से अभिहित किया जाए या नहीं, और नहीं गिरिराज किशोर जैसे लेखकों की प्रतिष्ठा को इससे कोई फर्क पड़ता है कि उनकी किसी रचना को दलित साहित्य के दायरे में शामिल किया जाता है अथवा नहीं। परिशिष्ट से यह बात तो निश्चित रूप से प्रामाणिक रूप में उभर कर सामने आती ही है कि समाज में, समाज के विभिन्न संस्थानों में, जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी भी दलित वर्ग को अनेक प्रकार से उत्पीड़ित किया जाता है। इस अर्थ में परिशिष्ट उपन्यास में राम उजागर जैसे प्रखर दलित युवक की हत्या की प्रस्तुति एक क्रूर सामाजिक यथार्थ को ही प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। उपन्यास में इस आत्महत्या के बाद की व्यवस्था की क्रूरताओं को भी और अधिक निर्ममता से उद्घाटित करके इस व्यवस्था में मानवीय करुणा का स्रोत पूरी तरह सूखे होने की अमानवीय स्थिति भी उघाड़ी है। जैसे कि इस प्रकार की घटना के बाद होता है कि एक जांच बैठा दी जाती है जो व्यवस्था के भीतर पनप रहे सड़े हुए मानव विरोधी तंत्र की क्रूरताओं पर से पर्दा उठाने के बजाय उन्हें जमीन में और गड़े गाड़ने या पहले से गड़ी हुई सैकड़ों लाशों हजारों लाशों पर कुछ और मिट्टी डालने का काम कर व्यवस्था के षड्यंत्र को कुछ और बढ़ा देती है। परिशिष्ट उपन्यास के शिल्प में ही इस जांच रिपोर्ट को परिशिष्ट के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है, लेकिन इस जांच रिपोर्ट के झूठ पूरे झूठ और पाखंड को उगाड़ने के लिए राम उजागर के गरीब अनपढ़ पिता का जांच आयोग को किसी से लिखवा कर भेजा गया पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। इस पत्र में यह अभागा पिता कहता है, मैं अपना बयान देता हूँ, इसी को मेरा बयान समझ लीजिए। मेरे बेटे को बड़े बड़े घरों और ऊंची जाति के लड़कों और मास्टरों ने मरने के लिए मजबूर कर दिया। क्या आप मेरे कहे पर यह सब मान लेंगे? नहीं मानेंगे तो फिर बुलाते क्यों हैं? परिशिष्ट का राम उजागर के जुझार व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मुक्त हुआ चरित्र अनुकूल राम का व्यक्तित्व एक दूसरे प्रकार की दिशा ग्रहण कर रहा है। वह राम उजागर के बाहरी रूप में प्रखर अभिव्यक्ति वाले स्वरूप में अलग एक आंतरिक संघर्षशील व्यक्तित्व को ग्रहण कर रहा है, जिसमें यह धैर्य अधिक है कि इस अन्याय को उसे लंबे समय तक झेलना है, लेकिन इस अन्याय से प्रताड़ना भले ही झेल ले उसके आगे झुकना नहीं है। इसे पराजित नहीं होना है और न ही उससे पलायन करना है। वह उच्च जाति दंभी गुंडे लड़कों की मार भी बिना पलट कर वार किए झेल जाता है, लेकिन IIT छोड़ने का नहीं, वहीं बनी रहने का निर्णय लेता है। उसका भविष्य बहुत आशावान नहीं है, लेकिन पलायन के पीछे लौटना और भी अधिक निराशा का कारण है। इसलिए वह कुछ हद तक गांधीवादी निष्क्रिय प्रतिरोध का हथियार अपनाते हुए वहीं रहकर अन्याय को सहन करते हुए इस अमानवीय परिस्थिति के प्रतिरोध का रास्ता चुनता है। पूरे उपन्यास में एक भी स्थल ऐसा नहीं है जहां अचेत रूप में भी लेखक की संवेदना अपने दलित चरित्रों के प्रति प्रतिबद्ध न जान पड़े या उनके प्रति निरपेक्षता का भाव जगाए। उपन्यास के आदि से अंत तक उपन्यासकार की संवेदना, सहानुभूति और लगाव पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने उपन्यास के प्रताड़ित दलित चरित्रों के प्रति है। फिर भी यदि कुछ आलोचकों को वशिष्ठ या इस प्रकार की अन्य रचनाओं में यथास्थितिवाद या जातिवाद का समर्थन नजर आए तो यह उनके परिप्रेक्ष्य में ही कहीं किसी कमी की ओर इंगित करता है, न कि लेखक की संवेदना में उच्च जाति के स्पर्श की ओर। वशिष्ठ को दलित साहित्य की कोटि में शामिल किया जाए या नहीं, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह बात निश्चय से कही जा सकती है कि जगदीश चंद्र के उपन्यास त्रयी की तरह ही गिरिराज किशोर के इस उपन्यास में भी दलित जीवन के यथार्थ को उच्च शिक्षा संस्थाओं के संदर्भ में पूरी वस्तुगतता, संवेदना व सहानुभूति के साथ चित्रित किया गया है। यही इस उपन्यास की महती सफलता है, जो शायद लेखक के लिए आंतरिक संतोष का भी कारण हो।